ओम शांति। एक अत्यंत अमीर आदमी एक फकीर को, एक गुरु को अपने घर बुलाता है। वो घर घर नहीं, महल है, इतना विराट, इतना भव्य। और वो इस गुरु को एक कमरे से दूसरे कमरे में घुमाता है। ढेर सारी चीज़ें हैं, वस्तुएं हैं, फर्नीचर है, ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जो शायद उस शहर में किसी के पास ना हो। घंटों तक वो अमीर व्यक्ति उस गुरु को अपने घर में घुमाता है, दिखाता है, ये वस्तु यहाँ से ली है, ये वस्तु वहाँ से ली है, इसकी कीमत इतनी है, उसकी कीमत उतनी है। वो भवन वास्तव में बहुत विशाल है। और अंततः जब कुछ घंटों बाद सारे कमरे, सारा भवन देखकर हो जाता है, तो वो अमीर व्यक्ति उस गुरु से पूछता है, व्हाट इज योर इम्प्रेशन, तुम क्या सोचते हो, कि जो कुछ अभी दिखाया उस विषय में तुम्हारे क्या विचार है। वो फकीर कहता है, मैं वास्तव में बहुत आश्चर्यचकित हूँ कि धरती कितनी शक्तिशाली है, जो तुम्हारे इस भवन का बोझ ढो रही है और साथ में तुम्हारा प्लस यू। हर व्यक्ति एक बोझ के साथ चलता है, मैं का और मेरा का, ये मेरा है, ये मेरी है, मैं, मेरा और मेरे स्वप्न, ये तीन चीज़ों के इर्द गिर्द उसका सारा जीवन चलता है। एक तो मैं, एक ये मेरा और तीसरा मेरे स्वप्न, इन तीनों के बीच में जो भी आता है वो उसे विघ्न लगता है, बाधा महसूस होती है और वही बोझ बन जाता है। अध्यात्म की यात्रा मैं से खाली होने की यात्रा है, मेरे से खाली होने की यात्रा है और मेरे स्वप्न से खाली होने की यात्रा है। मैं, मेरा, मेरे स्वप्न, ये बोझ है, भर देता है। हर व्यक्ति का अपना ही एक अहंकार का महल है, द पैलेस ऑफ ईगो। और जैसे इस व्यक्ति ने अपने महल को असंख्य चीज़ों से भर रखा था, वैसे ही हमने अपने अहंकार के महल को अनगिनत वस्तुओं से भर रखा है, जो है बोझ, परंतु हमें लगता है वो उसकी शोभा बढ़ा रहे हैं। ये सारी यात्रा इस महल को खाली करने की यात्रा है, टू एम्प्टी द पैलेस ऑफ ईगो। बाबा ने आज कहा, सब छोड़ो। क्या क्या छोड़ो, क्या क्या छोड़ना पड़ेगा? मधुबन वाले, मधुबन छोड़ना पड़ा तो, सेंटर वाले, सेंटर छोड़ना पड़ा तो, ज्ञान सरोवर वाले, शांतिवन वाले, विदेश वाले, घर गृहस्थ वाले, अपना घर छोड़ना पड़ा तो, कुछ भी याद ना आए, सब छोड़ना पड़ेगा, ऑफिस, कमरा, खटिया, अलमारी, सब कुछ तैयारी है, एवर रेडी है, अभी जाके आऊँ, इससे मिल के आता हूँ, उससे मिल के आता हूँ, नहीं, अभी नाउ, ऑर्डर इज ऑर्डर, ऑर्डर इज ऑर्डर, अभी के अभी ऑर्डर आ जाए, अभी यहाँ पर बाबा आ जाए और कहे चलो, क्या कहेंगे? एक फोन कॉल, घर पे बता देता हूँ मैं जा रही हूँ। सेंटर के स्टूडेंट से एक बार अंतिम विदाई, जिनका आधा कोर्स बाकी था उनको बोलूँ अभी अगला कोर्स दूसरी कोई बहन करेगी। जॉब में बॉस को इन्फॉर्म कर देता हूँ, एवर रेडी मीन्स नाउ, राइट नाउ, अब भी तैयारी है, कुछ भी हद ना है, सब कुछ नष्ट होते हुए देखने की तैयारी, खाली है, ना किसी को इन्फॉर्म करना है, ना किसी को बताना है। ब्रह्मा बाप ने भी डायरेक्शंस दिए, कैसे दिए? अपनी अव्यक्त स्थिति से दिए, मुख से नहीं। एक ही पुरुषार्थ है, दिस मोमेंट नाउ। अभी के अभी जाना हुआ, अभी के अभी शरीर छोड़ना हुआ, तो आत्मा की स्थिति क्या है? क्या है अंदर? किसी को बताना नहीं है, किसी से बात नहीं करनी है, किसी से मिलना नहीं है, सब छोड़ना है। और ये आएगा प्रैक्टिस से। इस मुरली में बाबा ने कहा है प्रैक्टिस करो, ड्रिल करो। कौन सी ड्रिल? तो एक ही ड्रिल है, दूसरी और कोई ड्रिल ही नहीं है। एक ड्रिल है और एक धुन है। धुन कौन सी? धुन 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 कौन सी मुरली में है? सेकंड लास्ट पैरा, घर जाने की धुन आज की मुरली में है। ये हफ्ते भर का नहीं सुनाना है, आज का सुनो। धुन तो ये नहीं है। धुन कौन सी है? उसका कदम और मेरा कदम एक, ये है धुन। एक है धुन, एक है ड्रिल, ये दो बातें हैं। ड्रिल कौन सी? एक सेकंड की ड्रिल है। अभी अभी शरीर में, शरीर से बाहर। अभी अभी आवाज में, आवाज से बाहर। अभी अभी समय में, समय से बाहर। अभी अभी व्यक्त, व्यक्त से बाहर। अभी अभी मुख चालू, अभी अभी मुख बंद। अभी अभी बुद्धि चालू, अभी अभी बुद्धि बंद। अभी अभी इस ड्रेस में और अभी अभी उस ड्रेस में। ड्रिल ये एक ही है। दिस इज द ओनली फाइनल ड्रिल। शरीर से अलग हो जाना, बीज रूप, बिंदु रूप, आकारी रूप, अव्यक्त रूप, फरिश्ता रूप, डबल लाइट फरिश्ता रूप, यही है अशरीरी आत्माभिमानी विदेही देही अभिमानी, ये कुछ भी नाम दो उसको, बीज रूप कंबाइंड। ड्रिल एक ही है और वो भी कैसी है? एक सेकंड में। पर इसके लिए लंबी प्रैक्टिस चाहिए, बहुत 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 लंबी प्रैक्टिस, क्योंकि देह में आत्मा ऐसी फंसी हुई है। बाबा ने क्या कहा है? बीच बीच में करो इसको, इस अभ्यास को। थोड़ा भी कर लो तो भी बहुत है। अभी अभी शरीर में, अभी अभी शरीर से बाहर। शरीर आउट, बॉडी इन, बॉडी आउट। साउंड साउंडलेस, बॉडी बॉडीलेस, टाइम टाइमलेस। दिस इज द ओनली ड्रिल। कोई भी अव्यक्त मुरलिया उठा लो, कहीं की भी उठा लो, ड्रिल तो एक ही है। शरीर में आना, शरीर से बाहर जाना। आवाज में आना, आवाज से बाहर जाना। समय में आना, समय से बाहर जाना। व्यक्त में आना, अव्यक्त में जाना। व्यक्त अव्यक्त, बुद्धि चलाना, बुद्धि न चलाना, मुख चलाना, मुख न चलाना, आवाज आवाज से परे, शरीर शरीर से परे। यही एकमात्र ड्रिल है। एग्जाम का क्वेश्चन पेपर पहले ही पता चल गया है। और धुन एक ही धुन। पर यह अभ्यास सिंपल अभ्यास नहीं है। चार शिष्य किसी आश्रम में प्रतिज्ञा करते हैं कि अगले 7 दिन संपूर्ण मौन का अभ्यास करेंगे, क्योंकि बोलने में बहुत शक्ति जा रही है। क्या करेंगे? टोटल साइलेंस, मौन व्रत, ऑब्जर्वेंस ऑफ साइलेंस। और चारों ध्यान में बैठ जाते हैं। जैसे ही बैठते हैं, जो दिया वहां रखा रहता है, हवा चलती है और दीवा बुझने लगता है। पहला कहता है अरे दिया बुझ रहा है, दूसरा कहता है तुम बोले क्यों, तीसरा कहता है तुम दोनों ही मूर्ख हो, दोनों ने बोल दिया, तीसरा कहता है मैं ही अकेला हूं जो नहीं बोला। ये इतना कठिन है। सेम व्यक्त अव्यक्त, आवाज और आवाज से परे, इसका अनुभव है उसका अनुभव कम है। टू प्रैक्टिस कब करनी है, अभी अभी करो, बाद में करो, दिन में करो, रात में करो, दिन रात। तो आज की अव्यक्त वाणी कहाँ, क्या कह रहे हैं बाबा शुरुआत में, कौन हो साहब, कौन हो, आत्मा, बाप दादा किसको देख रहे हैं, श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माओं को देख रहे हैं। क्यों, पूरी मुरली में कुछ शब्द है जिनकी कोई एक मूर्ति है और कुछ शब्द है जिनकी कोई मूर्ति नहीं, कुछ अमूर्त है कुछ इमेज वाले हैं। एक चित्र बना के रखना है कि कौन हूं, ताज है, तख्त है और तिलक है, अपने तिलक को चेक करना है ऐसे है या नहीं, देख लो एक बार, तिलक ताज देखो है क्या, है चेक किया क्या, करो दो, हाँ ताज भी कैसे है दो, और तख्त, तख्त को भी चेक करो। ये काम दिन में करते रहना है, क्या करेंगे, ताज को देखो, तिलक को देखो, ताज को देखो और तख्त को देखो। ये स्थूल चीजें हैं जो इमेजिन की जा सकती है। ताज कौन सा, पवित्रता के महामंत्र द्वारा कौन सा ताज, लाइट का ताज। ताज कौन सा, जिम्मेदारी का ताज। तख्त कौन सा, भगवान के दिल का तख्त। और तिलक कौन सा, स्मृति का तिलक। ताज, तख्त और तिलक। और केवल हम ही नहीं, सोचो यहां जितने बैठे हैं, एक बार पीछे मुड़ के सबको देख लो, सबको देखो एक बार, दिख रहा है ताज, दिखा क्या, सबने क्या पहना है, ताज, वो भी कैसे दो, तख्त पर बैठे हैं और क्या लगा हुआ है, तिलक। ये तीन चीजें हैं, ताज, तख्त और तिलक। और बाबा ने कहा भाग्य का क्या है, सितारा, कभी भाग्य का सितारा है, भाग्य का चक्र है, भाग्य की कलम है, भाग्य का क्या क्या, कम से कम 10 पोते आएगी, वो लिख लो आज होमवर्क। भाग्य की तुलना कस किस किस से की जा सकती है या की गई है मुरलियों में, तीन चार तो अभी बता दिए, भाग्य का चक्र होता है, भाग्य का सूर्य होता है, भाग्य का तिलक होता है, भाग्य की कलम होती है, भाग्य की रेखाएं, आज बाप दादा भाग्य की रेखाएं देख रहे, आज बाप दादा भाग्य की कलम देख रहे, भाग्य का खजाना बहुत सारा हो सकता है। प्राप्तियां नहीं, वो जो शब्द आएगा वो इमेज वाला होना चाहिए, वस्तु होना चाहिए, जैसे कलम, जैसे सितारा, और कहाँ चमक रहा है, मस्तक पर। ये सितारा विचित्र है, कभी चमक कम होती है कभी चमक ज्यादा होती है, ये अलंकारिक भाषा है। भाग्य का कंपैरिजन किससे किया, सितारे से। सितारा की चमक कम या ज्यादा होना अर्थात भाग्य की स्मृति कम या विस्मृति, विस्मृति होते ही क्या होगा, दुख, दुर्भाग्य, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मैं ही ऐसी क्यों। और भाग्य चमक रहा है, सितारा अर्थात स्मृति है। बाबा ने हमारे भाग्य की तुलना किससे की है, कंपैरिजन है, एक मुरली में एक व्यक्ति से तुलना की है, श्री कृष्ण से तुलना की है, उससे भी ज्यादा भाग्य वाली आत्मा है तुम हो। क्यों, उसके पास भी ताज तख्त तिलक है, परंतु बचपन से नहीं, तुम्हारे पास जन्मते ही है, पालने से, पालने में ही ताज तख्त और तिलक है, उसके पास नहीं है. सो दिस इज द कंपैरिजन. मुरली में क्या होता है? कंपैरिजन होता है एक. मुरली में क्या होता है? उदाहरण होते हैं. मुरली में क्या होता है? स्टोरीज होती है. मुरली में क्या होता है? वो अव्यक्त चीजों को व्यक्त चीजों के आधार लेकर समझाता है. भाग्य अव्यक्त है, उसको समझाया कैसे जा रहा है? व्यक्त की चीज एक पकड़ी, एक उदाहरण लिया, उस पर उसको टंगाया, सितारा. नहीं तो सितारे का भाग्य से क्या लेना देना, सितारा तो उधर है आकाश में, समझाने के लिए. और जो लास्ट लास्ट की मुरलियां है उसमें बहुत कम उदाहरण है. 1915, 1916, 1970, 2017, 2016, 2015, उसमें केवल वाह 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 बच्चे वाह. बाइबल में इसका एक वर्णन है. पूरी बाइबल में जीसस क्राइस्ट अपने शिष्यों के साथ रहा, यहाँ वहाँ भटका, और हर जगह उदाहरण के रूप में वो बोलता है. जैसे जैसे मुरलियों में आता है, जैसे. और लास्ट का उसका जो भाषण है, अभी उसको सूली लगने ही वाली है, उसका एक शिष्य ने उसे धोखा दिया है, वो उसका शिष्य उस ग्रुप से निकलकर दुश्मनों के साथ मिला है और कहा है, उनको बताया कि ये लोग वहाँ हैं, तुम जाकर उसको वहाँ से पकड़ो. और वहाँ जीसस क्राइस्ट का अपने शिष्यों के साथ एक अंतिम संवाद है, उसको कहा जाता है सर्मन ऑन द माउंट. वो भी माउंट ही है, माउंट सिना है. ये सर्मन ऑन माउंट अबू है भगवान का, यहाँ दिया हुआ प्रवचन उसका वहाँ दिया हुआ प्रवचन है. वो अंतिम प्रवचन वहाँ देता है, उसके सारे 11 शिष्य बैठे हुए हैं, और एक शिष्य अचानक बोलता है, लुक ही इज स्पीकिंग विदाउट पैराबल्स. अब वो जो बोल रहा है वो बिना किसी उदाहरण के बोल रहा है, और उसी भाषण में वो ये भी कहता है, जब मेरा समय आ जाएगा मैं कोई उदाहरण नहीं दूंगा, केवल प्लेन भाषा में बोलूंगा. और तभी वो शिष्य कहता है, नाउ ही इज टॉकिंग इन प्लेन वर्ड्स विदाउट एनी पैराबल्स, द टाइम इज नाउ. और उसी समय उसे पकड़ने वो लोग आ जाते, अर्थात तो उसका पार्ट अब पूरा हुआ. उसी तरह सारी अव्यक्त वाणियों में क्या है? उदाहरण है. स्टार का उदाहरण, श्री कृष्ण के साथ कंपैरिजन, कंपैरिजन है, उदाहरण है. और आखिरी आखिरी की मुरलियां जो है उसमें कोई उदाहरण नहीं है, उसमें क्या है? वाह बच्चे वाह, बच्चे कहते हैं वाह 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 वाह, यही है पूरी मुरलियां. उसमें वो गहराई नहीं है जो 60s, 70s, 80s, 90s की मुरलियों में है. ये मुरली कौन सी है? 98 की. सोच रहे सभी विनाश होगा होगा, कौन सा गीत बज रहा है सबके दिल में? होगा होगा का गीत बोला ना मुरली में. तो बाबा क्या देख रहे हैं? श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माओं को देख रहे, भाग्यवान आत्माओं को देख रहे. ये भाग्य कैसा है? वरदान से भाग्य कैसा है? अविनाशी नहीं है. ये भाग्य कैसा है? कोई कोई क्या नहीं कर सकता इसको, ये कोई छीन नहीं सकता, कोई लूट नहीं सकता, ऐसा ये भाग्य है. ये कितना अच्छा नशा है कि हम भाग्यवान हैं. दुनिया में लोग कैसे कहते हैं? अनलकी, लक नहीं था ना इसलिए ऐसा हो गया. तो हम भाग्यवान हैं, श्रेष्ठ आत्माएं हैं, ताज तख्त और तिलक धारी है, जन्मते ही ताज तख्त तिलक मिला है, भाग्य का सितारा चमक रहा है. यह चमकता हुआ सितारा विचित्र सितारा है और निरंतर चमक रहा है. दिस इज फर्स्ट पैराग्राफ. इतनी फर्स्ट पैराग्राफ में इतनी बातें हैं, उसको क्या करना है? पकड़ना है, उसका एक विजन बनाना है उसका, कि मैं कैसे बैठा हूँ ताज और तख्त और तिलक के साथ हूँ, और चमकता हुआ यहाँ सितारा है, तिलक है और उसके बीच में सितारा चमक रहा है और सदा चमक रहा है. दिस इज विजन. एक पिक्चर बनाना है, उस पिक्चर को कई बार देखना है ताकि वो परमानेंट हो जाए. आगे बढ़ो, चंद्रवंशी हो या सूर्यवंशी हो, कौन हो? सूर्यवंशी की निशानी दो निशानियां, विजयी और एक रस. जैसे सूरज होता है, उदय होता है, अस्त होता है, उसकी कलाएं नहीं होती है. चंद्रवंशी अर्थात अभी अभी जीत, अभी अभी हार, आज अमृत वेला किया कल नहीं किया, आज 3:30 बजे किया कल 4 बजे किया, फिर अगले दिन 5, और एक दिन तो सीधा उठे तो देखा 7 बज रहे, फिर सोचा ठीक है इट्स ओके, क्योंकि कोई दूसरा मिल गया वो कहता है मैं तो 8 बजे उठा, तब तो बहुत राहत मिल गई कि हम भी रेस में इतने पीछे नहीं है, हमसे भी गए गुजरे बहुत है। ऐसी राहत देने वाले यहां बहुत है जो हमारे दुख के समभागी साथीदार बनते हैं और हमारे दुख को थोड़ा घटाते हैं। पुरुषार्थ का जो दुख है, मुरली का जो दुख है, आज मेरी मुरली मिस हो गई, अरे मेरी तो 3 दिन से मिस हो रही है, अरे वाह, अंदर से बाहर से, हाँ बाहर से तो दिखाना होता। सूर्यवंशी अर्थात सदा विजयी, सूर्यवंशी अर्थात एक रस, चंद्रवंशी अर्थात कभी मेहनत, बहुत मेहनत करना पड़ता है, बहुत मुश्किल है, ये होता नहीं है, बहुत भारी काम है, दिमाग भारी हो जाता है मुरली पढ़ते पढ़ते, पता नहीं बहुत बोझ बोझ लगता है। सुनना ठीक है, चुपचाप क्लास में आके बैठो, कोई टेंशन नहीं, कोई पूछता नहीं, ये सबसे आसान काम है, यहाँ आके बैठो, इस पे टेंशन है थोड़ी। तो क्या बनना है, मैं कौन हूं, सूर्यवंशी, मैं कौन हूं, नंबर 1, नंबर वार नहीं, कौन, नंबर 1, नंबर वार नहीं, ये भी सोचते रहो सोचते रहो सोचते रहो सोचते रहो, लक्ष्य और लक्षण। जब भी मुरलियों में 2 चीजें आती है, 2 चीजें, उनको क्या करना है, एक टेक्निक है जिसको कहते हैं ड्रिप्स मेथड, DRIPS, वो यूज करना है वहां पर। क्या होती है ये ड्रिप चढ़ाना है, 2 चीजों को जोड़ने की ये टेक्निक है। चलो इसकी चर्चा फिर कभी करेंगे, लंबी टेक्निक है नहीं तो फिर उधर चले जाएगा डिस्कशन कल सुबह। नेक्स्ट, तो लक्ष्य और लक्षण, नंबर 1, सूर्यवंशी चंद्रवंशी, भाग्य सितारा, 2, 2, 2, 2, 2, ऐसी 2-2 चीजें उसमें से पकड़ लेनी है। ये आज, कल कुछ और होगा, कहीं 3 होगी, कहीं 4 होगी, कहीं 5 होगी। बाबा को ये ऐसे नंबरिंग गिनाने में बहुत अच्छा लगता है। आज बाबा क्या देख रहे हैं, 5 बातें देख रहे हैं, मस्तक पर ये, गाल में ये, नाक में ये, होठ में वो, कान में वो, हाथ में वो, पैर में वो, दिल में ये, फिर अगले दिन सब चेंज, और 1 बात और देख रहे हैं, वो अगली बार सुनाएंगे जो फिर कभी नहीं आता। तो बाबा ने कहा चेक करो कहाँ हो, सदा विजयी सदा एक रस अर्थात सूर्यवंशी, और आगे बढ़ो। इस मुरली में एक बहुत बहुत पावरफुल वाक्य है, ब्रह्मा बाप तुम्हारा आह्वान कर रहे, क्या कह रहे, आओ मीठे बच्चे जल्दी आओ, ये तो है। उसके आगे एक छोटी सी लाइन है, क्या है वो, हाँ क्या कहा, ब्रह्मा बाप की आवाज सुनो और कैच करो, ये है ड्रिल। क्या करना है, आवाज को सुनना है, अभी किसी की आवाज सुननी है, बहुत भीड़ है, सुनाई नहीं आएगी, मौन में जाना पड़ेगा, एकांत में जाना पड़ेगा, साइलेंट। तो कल अमृत वेले ये काम करना है, कौन सा, कि वो कुछ कह रहा है, कौन कह रहा है, ब्रह्मा मुझे अपने पुरुषार्थ के बारे में कुछ कह रहा है, अपने जीवन के बारे में पर्सनल कुछ कह रहा है, पर्सनल जनरल नहीं, वो मुझे क्या करना है, कैच करना है, ब्रह्मा बाप की आवाज सुनो और कैच करो। कौन कैच कर सकेगा, जिनकी फ्रीक्वेंसी मैच हो रही है, वो यहां हम नीचे, कैसे होगा, वो अव्यक्त हम व्यक्त, वो बोलता ही नहीं, हम बोलते रहते हैं, जो स्पष्ट है क्लियर है वही सुन सकेंगे। ये बहुत अच्छी एक होमवर्क, ड्रिल, अभ्यास, एक काम दिया गया है, सब कुछ बाजू में रख दो, इवन ज्ञान भी, पूर्ण प्लेन बुद्धि एकदम खाली, मुझे कुछ भी नहीं पता, अब मुझे सुनना है तुम क्या कहते हो। ब्रह्मा बाप की आवाज सुनो और क्या करो, कैच करो, ऐसा ही वाक्य है ना। और मुरली में आगे और एक जगह है यही वाक्य, उसमें एक चीज और एडिशन है, ब्रह्मा बाप की आवाज कैसे सुनो, आवाज कैसे सुनो। पता नहीं कौन सा मुरली चल रही है, वही चल रही है कि जो सुबह हमने सुनी थी, ऐसा तो लग तो रहा है, थोड़ा थोड़ा सुना तो था बाद में पता नहीं। विथ अटेंशन सुनो, क्या लिखा है, आवाज सुनो कैसे, अटेंशन से। दादाजी है, उनकी घड़ी खो गई है, उनके पास उनके पोते वो सब बच्चे बच्चे हैं, वो कहता है मेरी घड़ी खो गई है ढूंढो, सब ढूंढ रहे हैं इधर उधर उधर उधर, किसी को नहीं मिल रही है। और फिर एक छोटा सा बच्चा जो है वो ढूंढ के लाता है, वो कहता है तुमने कैसे ढूंढी, वो कहता है कि मैं, मुझे खटिया के नीचे से आवाज़ आ रही थी, मैं वहाँ गया कान बंद कर कर, अपना आँखें बंद करके वहाँ पे ऐसे बस सो गया, और फिर मुझे अचानक से आवाज़ आई टिक टिक टिक, और फिर मुझे पता चला कि घड़ी वहाँ है, और फिर मैंने वहाँ से पकड़ ली। तो कुछ चीज़ें सुनना है तो क्या करना पड़ेगा, संपूर्ण कॉन्सेंट्रेशन, टोटल अटेंशन। अगर इसकी आवाज़ सुननी है जो अव्यक्त है, जो इस दुनिया में है ही नहीं, तो हमें भी वैसा ही चुप अव्यक्त, ये अमृत वेला कल प्रैक्टिस करना। तो कल की प्रैक्टिस क्या है, ब्रह्मा की आवाज सुनना और कैच करना। और ये भी नहीं समझो कि कल काम नहीं हुआ तो एक ही दिन में काम हो जाएगा, इसकी भी प्रैक्टिस, इसकी भी प्रैक्टिस। एक दिन में कुछ भी नहीं होता है, टाइम लगता है, रोज रोज प्रैक्टिस करो। आज तो बोलेगा, बोल तो रोज ही रहा है पर सुनाई नहीं देता है, कानों में क्या है, कचरा बहुत है, कुछ भी सुनाई नहीं देता है। उसे निंदा के शब्द बहुत जल्दी सुनाई देते हैं। सुबह भी कह रहे थे, सुबह बताया था एक बात कि दो शिष्य झगड़ते हैं आश्रम में, गुरु के पास जाता है, कहते हैं हमारा झगड़ा हुआ, कैसे झगड़ा हो गया, पहले इसने झगड़ा चालू किया, पहले उसने झगड़ा चालू किया, पहले बंदर किसने कहा, कहता इसने पहले बंदर कहा, मुझे बंदर कैसे कहा। गुरु कहता है मैं कितने सदियों सालों से तुमको सिखा रहा हूँ, तुम आत्मा हो, तुम आत्मा हो, आत्मा हो, ये तुमने कभी इधर नहीं लिया, और इसने केवल एक ही बार कहा तुम बंदर हो, सीधा वो तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर घुस गया, और तुमने उसे पूर्ण रूप से स्वीकार की कर लिया, पर इस बात को नहीं स्वीकार कर रहे हो जो मैं कह रहा हूं। कचरा कानों में बहुत भरा है, सफाई अभियान चालू करने की आवश्यकता है। ये जब साफ होगा तो फिर आवाज सुनेंगे, कैच करेंगे। तो ये है इस मुरली से उठाने वाली एक पावरफुल वाक्य है ये। दूसरा क्या कहा, फिर दो बातें और, हमारे कदम और उसके कदम, दो बातें, हमारे कदम कहाँ जा रहे हैं, उसके कदम कहाँ। बाबा ने कहा तुमको कुछ करना ही नहीं, बस कदम पर कदम चल रख कर चलो। किन बातों में, चार बातों में, संकल्प बोल, कर्म संबंध संपर्क, इसमें से भी संबंध संपर्क, हमारे संपर्क आत्माओं से संबंध किस तरह के हैं, उसमें मोह भरा है, इच्छाएं भरी है, वासनाएं भरी है, क्या भरा है, चेक करो, स्वयं को देखो, दूसरों को नहीं, ये भी बोला एक जगह। उसके लिए थोड़ा सा स्टडी करना पड़ेगा, लाइफ स्टोरी ब्रह्मा की डिटेल में। इस परिस्थिति में हमारी जगह अगर वो होता तो वो क्या कहता, बोलता, सोचता, सेम सिचुएशन अगर उसके पास आती। और इस मुरली में सिचुएशंस के लिए एक बहुत अच्छा शब्द प्रयोग किया गया है, कौन सा, परिस्थितियों के लिए, परिस्थितियां जो आती है, बादल, क्या कहा, वो क्या है, बादल है, बादल आए और चले गए। बाबा ने तुरंत मुरली को यहाँ डायरेक्शन बदला है, बच्चे क्या कहते हैं 99 99, ये आने वाला है अभी 99 99, तो क्या क्या होगा, क्या होगा, ये गीत गाते रहते हैं, और प्रकृति विकराल रूप धारण करेगी। ऐसे समय पर तुम्हें क्या करना है, जो न्यूज़ आती है उसमें सुनने में बिजी नहीं रहना है, किस में बिजी रहना है? अपनी स्थिति बनाने में, अचल अड़ोल रहने में, प्रकृति से अप्रभावित। प्रकृति पति हो तुम, अचल हो, और ये जो परिस्थिति आए ये सब क्या है? बादल। ये भी एक अभ्यास है। एक बादल का चित्र बनाओ डायरी में, और जो परिस्थिति है उसमें उस बादल के ऊपर उसको लिख, उस बादल के अंदर उसको लिखना कि ये क्या है? क्लाउड। और क्लाउड क्या आते हैं? आते और चले जाते हैं। कोई भी परिस्थिति, वो शरीर की बीमारी क्लाउड है, आया और चला जाएगा। किसी आत्मा से विघ्न आ रहे हैं, वो क्या है? क्लाउड, आया और चला जाएगा, बादल है केवल। साइकोलॉजी में एक और एक्सपेरिमेंट कराते हैं, जो गुब्बारा होता है ना, एक चिट्ठी पे अपना कुछ लिखो, समस्या, परिस्थिति, विघ्न, या जिससे बहुत दुख है, या जिससे छूटना चाहते हैं, बहुत ही मोह है, और उसको उस गुब्बारे के अंदर डाल दो, गुब्बारे को फुलाओ और उसको उड़ा दो, और देखो उड़ते हुए वो जा रहा है। स्थूल चीज़ें करनी है कुछ, सूक्ष्म में काम करने के लिए कि वो गुब्बारा चला गया। या फिर जिससे हमारा बहुत मोह है, आसक्ति है, बहुत खिंचावट है, बिल्कुल उसके बिना रह ही नहीं सकते, उसको भी इमर्ज करो और देखो। सिल्वर कॉर्ड से दोनों बंधे हुए कुछ तार है, और अमृत वेला वैराग्य की कैंची से उसको क्या करना है? काटना है। स्थूल एक्सपेरिमेंट्स। तो ये सब क्या है? परिस्थितियां, बादल, अनित्य है, आज है कल नहीं है, दोनों ही परिस्थितियां, अच्छी भी और बुरी भी, वो भी बदल जाएंगे, ये भी बदल जाएंगे, सब अनित्य है। सब कुछ, शरीर की बीमारी आएगी चली जाएगी, उसको पकड़ के नहीं बैठना। छोटा सा ऑपरेशन क्या हो गया, एक महीने तक किसी का हाथ पकड़ पकड़ के सहारा लेके चलते रहते, क्यों? ऑपरेशन, इतू सा ऑपरेशन, कमजोरी। कोविड वाली कमजोरी अभी तक नहीं गई है, अभी तक चल रही है, शरीर में नहीं, मन में। कोविड आया और चला गया, बादल था। मौत का साया जा रहा है, साधु बैठा है, साधु पूछता है कौन हो, वो कहता है मौत। व्हाट इज द टारगेट? वो कहता है 500 को मारने का टारगेट है, गांव में घुस रहा हूं, टारगेट कितना है? 500 का। एक महीने के बाद साया वापस जा रहा है, वो कहता है तुमने तो कहा था 500 को मारूंगा, या तो 10,000 मर गए। कहते मारा तो मैंने 500 को ही, बाकी सब मर गए भय से, टारगेट तो पूरा किया है, बाकी किससे मरे? सारे भय से। बीमारी और बीमारी का भय, ये दो अलग अलग चीजें हैं। परिस्थिति और परिस्थिति का भय, ये अलग अलग चीजें हैं। व्यक्ति और उस व्यक्ति का भय, अलग अलग चीजें। तो बाबा ने कहा तुम कौन हो? प्रकृति पति हो, परिस्थितियां और विकराल होगी, तुम्हें प्रभावित नहीं होना है। प्रकृति के प्रभाव से मुक्त फरिश्ता, क्या बनना है? फरिश्ता। कौन सा फरिश्ता? जो अचल है, जो अप्रभावित है, जो अनडिस्टर्ब्ड है। कभी सर्दी है, कभी गर्मी है, कभी धूप बहुत है, प्रकृति अपना काम कर रहा है, उसमें इंटरफियर नहीं करना है, वो होते रहेगा कुछ कुछ कुछ, अपने आप को अंदर से चेंज करते रहना है। आगे व्यक्त और अव्यक्त, इसका अभ्यास करो। आगे और क्या है मुरली में? डबल लाइट फरिश्ता, और क्या है? हाँ, फिर यहाँ पे वो वाली बात कही है, एवर रेडी वाली। तो पूरी मुरली में एक्चुअली दो ही टॉपिक है, एक टॉपिक अभी तक जो कुछ सुनाया, भाग्य का, उसकी स्मृति का, परिस्थितियों में स्टेबल रहने का, और फिर और एक है एवर रेडी रहने का। सब कुछ छूटेगा, क्या क्या? सेंटर, घर, परिवार, ऑफिस, सब कुछ, सब कुछ, सब चला जाएगा। तुम कितना स्थिर हो, एवर रेडी हो, अभी जाने के लिए तैयार हो, अभी ऑर्डर करे, अभी ताली बजाए, अलग अलग शब्द है। ये पेपर है, पेपर ले। तो इसकी एक बहुत गहरी प्रैक्टिस है, ऐसी कुछ बातें लिखनी है अपनी डायरी में जिससे हमारा बहुत गहरा मोह है। वो हो सकता है हमारा घर हो सकता है कोई व्यक्ति हो, बैंक हो, पैसा हो, कुछ भी। ये तो निश्चित है कि सब कुछ जाएगा, कुछ भी नहीं रहेगा। इसके लिए जो कुछ करना है बस सफल करते जाओ, उसको कुछ नहीं बचेगा। हम गए तो सब गया, विनाश कब होगा? विनाश कौन सा विनाश? तुम्हारा विनाश अर्थात विनाश। इन सब चीजों को देखते हुए ये सोचना है, ये अगर नहीं रहेगी तो मैं कैसे रहूंगा? विल आई बी स्टेबल? ये पद जो अभी प्राप्त है वो चला जाएगा, ये पोस्ट चली जाएगी, ये पैसा चले जाएगा, ये व्यक्ति चला जाएगा, ये मोबाइल वो भी चला जाएगा। मोबाइल चला जाएगा, अभी तो मोबाइल दो मिनट किसी के हाथ में चला जाए तो इसमें धड़कन बढ़ती है, इधर कहीं हमारा देख ना ले सीक्रेट, जगह जगह पर क्या डाल के रखे पासवर्ड, किसी को पता ना चले। ये एक प्रैक्टिस है, एवर रेडी रहने की प्रैक्टिस। रोज ये प्रैक्टिस करना है, कई बार अभी इसी वक्त अगर मुझे शरीर छोड़ना पड़े, अभी के अभी यहीं पर एम आई रेडी? बाबा ने कहा सब छोड़ दो, पहला तो ये कहा और फिर उसमें एक और एक चीज जोड़ी, एरिया वाली, मेरा एरिया कौन हो? विश्व कल्याणकारी हो। ये कहां से आया, मेरा एरिया कहां से आया? ये भी क्या है, मेरापन। एक है देह भान, एक है देह अभिमान। देह भान अर्थात स्त्री पुरुष, यस्त्र शरीर का आकर्षण या विकार, काम विकार। देह अभिमान अर्थात मेरी विशेषता, मेरी बुद्धि, मेरा ये, मेरा वो, मेरा ये सब क्या है? प्रभु प्रसाद। मेरा नहीं है, मुझे दिया गया है, ये इसको मुझे यज्ञ में लगाना है, कार्य में लगाना है, मेरा कुछ भी नहीं है ये। जैसे ही मैं कहता हूँ मेरा है, फोर्स माया चालू हो जाती है और फिर द्वंद्व चालू होता है, फिर डिस्टर्बेंस होता है। एक तो ये, और उसी में एक और चीज़ जोड़ी है पापा ने, वो कौन सी? सबसे ज़्यादा भारी करने वाली दो चीज़ें हैं, कौन सी? व्यर्थ और निगेटिव। तुम विश्व कल्याणकारी हो तो चेक करो, भावनाएं दूसरों के प्रति निगेटिव है, व्यर्थ वाली है। क्योंकि ये निगेटिव और व्यर्थ होगा तो क्या होगा? बोझ होगा एक, ये फरिश्ता बनने नहीं देगा। क्यों निगेटिव है भावना, उसकी खोज करनी है थोड़ी। वो चाहे कुछ भी करे, उसको जो करना है करने दो, हमें अपनी भावना को निगेटिव नहीं बनाना। क्योंकि निगेटिव भावना से सबसे ज्यादा नुकसान किसका है? खुद के। एक निगेटिव थॉट कितना डिस्टर्ब कर देता है, उसने मेरे लिए ऐसा कहा, डिस्टर्ब डिस्टर्ब डिस्टर्ब, पूरी रात चली जाती है, अमृत वेला खत्म, मुरली में कोई इंटरेस्ट नहीं। एक निगेटिव थॉट में इतनी पावर है, बेहद की दृष्टि, वृत्ति और तीसरा स्थिति। क्या कहा है मुरली में? बेहद की दृष्टि, वृत्ति और स्थिति। जिसको जो कहना है करने दो, हम क्यों डिस्टर्ब हो? हमें अपने आप को ऊंचा रखना है। वो जहां है हम भी वहां अगर पहुंच गए तो डिस्टर्बेंस ही डिस्टर्बेंस। तो एवर रेडी रहना, डिस्टर्ब ना होना, नेगेटिव और वेस्ट इसको ढूंढना बहुत मुश्किल काम है। क्योंकि निरंतर हम एक बेहोशी में जीते हैं। जैसे एक राजा जा रहा है और सड़क पर एक व्यक्ति खड़ा है, वो गालियां दे रहा है राजा को, पत्थर फेंक रहा है। इतना बड़ा राजा का सब समारोह, ये सब जा रहा है पूरा जुलूस, उसमें वो व्यक्ति ऐसा कर रहा है और सैनिक उसको तुरंत पकड़ लेते हैं और जेल में डाल देते हैं। राजा हंसते रहता है। दूसरे दिन उसे पेश किया जाता है, तुमने ऐसा क्यों किया? वो कहता है मैंने ऐसा किया? मैंने तो नहीं किया ऐसा, मुझे पता ही नहीं, मैं तो शराब पिए हुए था, बेहोश था। अध्यात्म की यात्रा होश की यात्रा है, अभी हम भी सभी क्या है, एक रीति से बेहोश। इसलिए क्या बोल रहे हैं, क्या सोच रहे हैं और क्या कर रहे हैं कुछ समझ नहीं आता है। निगेटिव चलते ही रहता है, चलते रहता है, चलते रहता है अंदर अंदर अंदर। ये बेहोशी है, निगेटिविटी बेहोशी है, देहभान बेहोशी है, देह अभिमान बेहोशी है, व्यर्थ भी बेहोशी है। और इन सब को खत्म करने का एक ही पावरफुल इलाज है, वो है मुरलियों का अध्ययन। एकदम सिंपल, मुरली लो, उसको लिखो, उसका चिंतन करो, उसका मनन करो, उसको सुनाओ, कुछ ना कुछ करते रहो उसके साथ। ये एकदम प्रैक्टिकल इलाज है। क्योंकि अगर हम ये कहें कि योग करो तो फिर तुरंत प्रश्न आता है, योग नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है, वैसा नहीं होता है, नींद आती है, योग कैसे करना है, आत्माभिमानी स्थिति का अनुभव कैसे करना है, वो बताओ। ये सब रखो बाजू में, वो सब बाजू में। जस्ट फोकस ऑन ओनली वन थिंग। कौन सी? मुरली की स्टडी। जैसे स्टूडेंट एग्जाम की स्टडी करते हैं, वैसे स्टडी करो। क्या करते हैं वो लोग? नोट्स निकालते हैं। क्या करते हैं वो लोग? रिवाइज करते हैं। क्या करते हैं वो लोग? रिकॉल करते हैं। और क्या करते हैं? अगर हम आपसे कहें 2 साल पहले कोई पिक्चर मूवी देखी होगी, वो क्या थी? वो याद है। अगर हम आपसे कहें 1 हफ्ता पहले जो मुरली पढ़ी थी या सुनी थी क्लासरूम में, वो क्या थी? जीरो रिकॉल। काम 2 चीजों पर करना है, एक तो पढ़ना और दूसरा रिटेंशन। क्या हो? वो रिटेन हो। आज की जो मुरली, परसों तक ये खत्म हो जाएगा, कुछ भी याद नहीं रहेगा। तो क्या करना है? आज की मुरली से कुछ पावरफुल बातें निकाल लेंगे जो कि पिक्चर के रूप में हमारे ब्रेन में स्टोर्ड हो जाए। पहला, ताज, तख्त और तिलक। तो चलते चलते क्या अनुभव करेंगे? क्या पहना हूँ? बीच बीच में ऐसे हाथ लगा के देखना है क्या? जैसे कई बार देखा होगा ना, लोग जाते हैं कुमार संसार में, जहां पर भी गाड़ी खड़ी रहती है और आईना होता है, तुरंत एक बार देख लेते सब ठीक है क्या, देखते हैं ना। वो जो फिल्म की शूटिंग होती है, एक लाइन बोलते हो तुरंत आते हैं, तुरंत वो आता है कैमरामैन, वो आईना लेके और ठीक करता है मेकअप। उसी तरह तुरंत बीच बीच में सबसे पहला अभ्यास क्या? ताज है, तख्त है, तिलक है। तिलक, ताज, तख्त कौन सा? भगवान का हृदय थे तख्त, बहुत प्योर है वो, उसमें केवल प्योर आत्मा ही बैठ सकती है। सोचो जैसे ही इम्प्योर थॉट्स आ रहे हैं, मतलब गिरे ने खिसक के नीचे, वो नहीं बैठ सकते उसमें। तिलक कौन सा? जिम्मेदारी का, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी। कौन सा? प्यूरिटी का। कौन सा? ताज, तख्त, तिलक कौन सा? स्मृति का। तो ये एक अभ्यास हमने इसमें से उठा लिया, ठीक है, ये याद रहेगा। दूसरा अभ्यास सितारा। जब भी आईना देखो तो क्या देखो? यहाँ क्या है? स्टार। उसको अच्छे से देखो, चमक रहा है या धुंधला हो गया, एक थोड़ा सा वो लेके उसके पोछ लेना है इधर, अगर ठीक नहीं है तो। आईने को पोछते हैं ना, अलमारी को साफ करते हैं ना, वैसे इसको भी बीच बीच में चमकाना है। इंटरव्यू के लिए लोग जाते तो जूते को कैसे साफ करते? ऐसे पीछे इधर करते हैं ना साफ, पैंट पे पीछे लगा लगा के। जस्ट 1 मिनट पहले, एंट्री करने से पहले, ऑफिस में जाने से पहले क्या करते? इधर ऐसे ऐसे साफ करते। यहां तो निरंतर इंटरव्यू हो रहा है। तो दूसरा अभ्यास तिलक, स्टार को क्या करना है? देखते रहो, जब भी आईना देखो क्या देखोगे? स्टार। तीसरा अभ्यास, जब भी चलोगे स्थूल, ऊपर देखना ये कदम कहाँ जा रहे हैं, उसके कदम है क्या? स्थूल का अभ्यास करना है, उसके कदम पर कदम, ये तीसरा अभ्यास। चौथा अभ्यास अमृत वेला। कौन सा? आवाज सुनना। अभी तक सुनाई क्यों नहीं दिया? कुछ तो है, कैच करना है उस आवाज को। अगला अभ्यास एवर रेडी का, जिसमें सबसे ज्यादा घर में मोह है ना, उस घर को जलता हुआ देखो। अरे ऐसी अशुभ बातें मत करो, अभी अभी तो बना है, इतने पैसे खर्च किए, सब 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 चला जाएगा। जिससे सबसे ज्यादा मोह है उसकी जलती हुई चिता को देखो। या क्या करोगे, रोओगे, चिल्लाओगे, आउटबर्स्ट इमोशनल? नहीं, ये नहीं हो सकता। क्या करोगे, व्हाट आर द ऑप्शंस? ये जा ही नहीं सकता। अभ्यास, कैसे अभ्यास है? ये मनोरंजन वाले हैं ना, ये दुख देने वाले हैं। अगला अभ्यास परिस्थितियां, क्या है? बादल। तो जो भी परिस्थिति है उसका एक लिखो, उसके ऊपर बादल बनाओ एक, ठीक है, डायरी में, और उसको उड़ाओ या उसको काट दो। वो जो बच्चे होते हैं ना, क्या करते हैं वो, ये बनाते हैं ना एरोप्लेन, वो बनाना आता है, आज बना लेना उसको। पर अपनी परिस्थिति लिख देना, प्रॉब्लम लिख देना, फिर उस कागज का क्या बनाना, एक एरोप्लेन। गया ये काम करने, स्थूल काम करने हैं थोड़े से स्थूल। जब तक हाथ, हाथ का प्रयोग, लिखने का प्रयोग, कागज का प्रयोग, ये सब स्थूल चीजों से जोड़ना है ज्ञान को। अगला एक्सपेरिमेंट आज की मुरली से, और क्या है, एक एवर रेडी हो गया, प्रकृति का हो गया, और क्या है, हाँ, निगेटिव एंड व्यर्थ। किसी के प्रति हमारे मन में क्या है, इतनी गहरी निगेटिविटी है, इतनी गहरी, ये है ही ऐसा, ये बात ही ऐसी है। मुरली में ये दो बातें आई है, ये व्यक्ति ऐसा है, ये बात ही ऐसी है, कुछ भी मत बताओ इसके बारे में। टॉपिक बहुत अच्छा है पर वो व्यक्ति भाषण दे रहा है, हम नहीं सुनेंगे उसका। टॉपिक तो बहुत अच्छा है पर उसका नहीं सुनना है, क्योंकि उसमें गड़बड़ है। हमारे मन में फिक्स्ड इंप्रेशन है लोगों के, ये ऐसा है, ये वैसा है, ये ऐसी नहीं है, ये वैसी है। इसको क्या करें, व्हाट टू डू? इसके लिए बाबा ने किसी एक मुरली में कहा है, तुमको दूसरों के वर्तमान संस्कार नहीं देखना है। कौन से देखने हैं? आदि और अनादि, बस। ये तो पक्का है वो आत्मा है कि नहीं है, दिस इज पक्का। दूसरा ये भी पक्का है वो परमधाम की आत्मा है। तीसरा ये भी पक्का है अगर ब्राह्मण है तो। बाबा ने क्या, ब्राह्मण ही रुकावट डालेंगे बोला है उसमें। रुकावट डालने वाले कौन है? ब्राह्मण। चाहे कोई भी रुकावट डाले, मेरी प्रतिज्ञा है, हमें तो बनना ही है बाप समान। तो क्या देखना है, उसके आदि संस्कार, ये प्रेम स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, पर अभी बेहोशी में है। आधी रात को कोई दारू पीकर व्यक्ति जोर जोर से चिल्लाता है, उसके ऊपर गुस्सा आता है या रहम आता है? यह हम सोचते हैं ये अंडर इन्फ्लुएंस है, ठीक है, इसे ट्रीटमेंट किया। कोई पेशेंट है, क्या क्या करते रहते हैं पेशेंट, उल्टी कर देते हैं डॉक्टरों के ऊपर, वो गुस्सा नहीं होते, उनको पता है ये बीमार है। अच्छा डेली ये क्या आता है, तो ये परवश है, एक ये परवश है, किसी एक संस्कार के अधीन है, बेहोशी में है, नशे में है, इसलिए ऐसा कर रहा है, इसलिए रहम दिल। एक दिन जाग जाएगा, एक दिन होश में आ जाएगा, इसलिए कुछ नहीं करना है। चुप, साक्षी, मौन, सकाश, शुभ भावना, शुभ कामना, दूर से देते रहो। बाबा ने कहा रावण से भी, क्या बोला था मुरली में, रावण से भी, हाँ कालापन तो था, रावण से भी कोई बड़ा आ जाए, ऐसा कुछ था ना एक वरदान में कभी, तो भी रहम दिल। काला कोयले से भी काला, तो क्या देखना है, ये प्रेम स्वरूप, वो सात आत्मा के गुण वो देखने हैं, और दूसरी और एक संकल्प है कि ये कौन सी आत्मा है, देवकुल की आत्मा है, देवता बनने वाली आत्मा, बस। वर्तमान को नहीं देखना है, ये दो को बार बार इमर्ज करते रहना है, और बाकी हमारा अपना भी तो कुछ हिसाब है उस आत्मा के साथ। वो चुप तो हो रहा है, अच्छा है, होने दो, होने दो, पर नए नहीं बनाने हैं, कुछ फ्रेश हिसाब, रिएक्शन करके। तो ये एक अभ्यास है। और क्या है आज की मुरली में प्रदान स्लोगन, विकर्म की तो बात ही छोड़ो, धोखा भी कौन देता है, ये व्यर्थ भी धोखा देता है, कब आता है पता ही नहीं चलता है। एक व्यर्थ संकल्प अंदर घुस जाता है और वो कितना देर चलता है, नॉन स्टॉप ओवर थिंकिंग चलते ही रह रहा है, चलते ही रह रहा है, चलते ही रह रहा है, वो रुकता ही नहीं। चक्र चालू हो जाता है, एक बार चालू हो गया तो स्टॉप इट। ये भी डिसेप्शन है, धोखा है बाबा ने कहा। और कोई पॉइंट मुरली में? ये मैं वो तो बोल दिया है, मेरा मेरा जो एरिया वाला है ना, ये सूक्ष्म मेरापन है, उस पर काम करना है। और धीरे धीरे ये सब जो भी हम में विशेषता है उसको क्या समझेंगे, ये क्या है, उसने दिया है। और जब उसकी इच्छा होगी ना, वो वापस भी ले लेगा, फिर क्या करोगे, ले लेगा। इसलिए सुदेश बेन कहते हैं ना, टंकी है हम, ये नल है, उसका पानी उस टंकी से इस नल से जा रहा है। नल को कैसा अहंकार, किसका है ये, उस टंकी का कि महिमा हमारी नहीं। ऐसे कैसे श्रेष्ठ आत्माओं को, अचल अडोल आत्माओं को, भाग्यवान आत्माओं को, ऐसे इच्छा मात्रम अविद्या आत्माओं को, ऐसे व्यर्थ से मुक्त आत्माओं को, निगेटिव से मुक्त आत्माओं को, डबल लाइट फरिश्ता आत्माओं को, अव्यक्त फरिश्ता आत्माओं को, बाप समान आत्माओं को, कदम पर कदम रखने वाली आत्माओं को, ऐसे कैच कर ब्रह्मा बाप की आवाज़ को सुनकर कैच करने वाली आत्माओं को, अटेंशन देने वाली आत्माओं को, स्वयं को देखने वाली आत्माओं को, ये ऐसा ही है, ये बातें ऐसी है, ऐसा ना सोचकर अचल रहने वाली आत्माओं को, ऐसे प्रकृतिपति आत्माओं को, ऐसे एक रस और विजयी आत्माओं को, सूर्यवंशी आत्माओं को, ऐसे नंबर वन आत्माओं को, ऐसे लक्ष्य और लक्षण समान रखने वाली आत्माओं को, ऐसे व्यर्थ निगेटिव बोल दिया, और राजधानी का क्या, ताज तख्त और तिलकधारी आत्माओं को, बाप दादा का याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते।